शालू और प्रांजल दोनों घर पहुंच चुके थे। प्रांजल पहले घर पहुंची थी। घर पहुंचते ही उसने सीढ़ियां पकड़ी और ऊपर वाले कमरे में चली गई। शालू ने भी उसके पीछे जाने की कोशिश की, मगर तभी प्रियंका जी ने आवाज लगा ली और उसे किचन के काम के लिए बुला लिया। उसे प्रांजल से बात करनी थी, मगर फिलहाल के लिए उसने प्रांजल से बात करने का मौका खो दिया था। प्रांजल ऊपर पहुंची और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करने के बाद उसने फ़ोन निकाला और प्रियल को कॉल किया। प्रियल फ़ोन उठाते ही बोली, हेलो, क्या हुआ प्रांजल, आज इस टाइम फ़ोन? तुमने इससे पहले कभी इस टाइम फ़ोन नहीं किया, सब सही तो है ना, कुछ हुआ है? प्रांजल फ़ौरन बोली, हाँ दी, हुआ है और बहुत कुछ हुआ है। इतना कुछ हुआ है कि आपको ये नहीं पूछना चाहिए क्या हुआ है, बल्कि ये पूछना चाहिए क्या नहीं हुआ। अब डर लग रहा है कहीं मॉम डैड को पता ना चल जाए आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बारे में। प्रियल को ये बात समझ में नहीं आई थी। उसने प्रांजल से पूछा, पर उन्हें कैसे पता चलेगा, हमने कुछ भी गड़बड़ नहीं की है और पूरा मामला भी सुलझ गया है, पुरानी कोई गड़बड़ भी सामने नहीं आने वाली है, तो पता कैसे चलेगा? तभी शालू ने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर आते हुए बोली, क्योंकि मुझे पता चल गया है और मैं चाची को सब कुछ बता दूंगी। पता नहीं तुम दोनों सबसे छिपकर क्या खिचड़ी पका रही हो। प्रांजल फ़ोन लाउडस्पीकर पर रखकर बात करती थी, तो प्रियल ने जो भी कहा था वो शालू ने सुन लिया था। प्रांजल फ़ौरन अपनी जगह से खड़ी हुई और शालू की तरफ देखते हुए बोली, देखो शालू दी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, आपको नहीं पता बात क्या है, ऐसे में आपका इंटरफेयर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप ना मुझे मत मजबूर करो, मैं किसी फिल्मी कहानी की तरह आपके सर पर डंडा मारकर आपकी याददाश्त तोड़ा दूं। उसने लास्ट वाली बात कही तो गुस्से में थी, लेकिन टोन नॉर्मल और फ्रेंडली वाला था। मगर शालू ने पूरी बात को गुस्से में ही लिया। ये क्या बोल रही है तू, मैं तुमसे बड़ी हूं तो तुम्हें पता होना चाहिए मुझसे कैसे बात करनी है। प्रियल बात से रूबरू नहीं थी, तो उसने सामने से वही रिस्पॉन्स दिया जो उसे फिलहाल की कंडीशन के लिए सही लगा। वो हंसी और हंसते हुए बोली, क्या हुआ प्रांजल, तुमने कहीं दिंडक तो नहीं कर रखी ना, जो ऐसे बहकी बात कर रही हो, डंडा मारकर याददाश्त भुला दोगी, क्या डायलॉग बोला है। प्रांजल के सर पर हल्का गुस्सा आ गया था। वो अपनी जगह पर बैठी और बिना शालू की परवाह किए कहा, हाँ मैंने तो दिंडक ही कर रखी है, जो ऐसी बहकी बात कर रही हूँ, वो जो आपका नीली आंखों वाला हीरो है ना, वो पागल हो गया है, आज उसने दिमाग घुमा दिया, उसे पता कैसे चला आप दत्ता फैमिली से रिलेटेड हो। प्रियल ये सुनते ही मायूस हो गई। उसने अपने हाथ की तरफ देखा जो सूजा हुआ था। वो बोली, बस चल गया यार, मुझे भी नहीं पता कैसे पता चला, कैसे चला, कब चला, मगर पता चल गया। पता चला तो चला, मगर उसे वो सब पता चला जो था भी नहीं। मुझे कह रहा था मेरी आइडेंटिटी नकली है, बला बला, उसकी आधी बात तो मेरी समझ में ही नहीं आई, मानो अलग ही दुनिया से कॉन्टैक्ट कर रहा हो। शालू प्रांजल के पास ही बैठी और कहा, देखो ये जो भी है मुझे भी पूरी बात बताओ, तुम लोग मुझसे बात छुपाकर मुझे टेंशन में डाल रही हो, मुझे ये भी नहीं पता बात क्या है, और मैं हूं कि मैं दोनों ही तरफ दौड़ने वाली हालत में पहुंच गई हूं। प्रियल और प्रांजल दोनों कुछ देर के लिए खामोश रहीं। इसके बाद प्रियल बोली, प्रांजल आपको इस बारे में सब बता देगी। फिर उसने प्रांजल से कहा, प्रांजल तुम दी को सब बता देना। ठीक है, प्रांजल ने जवाब दिया। जवाब देने के बाद उसने शालू की तरफ देखा और कहा, आप इनकी फिक्र मत ही करिए, इनसे मैं देख लूंगी, उस पागल से ज्यादा दिमाग तो हमारी खुद की दी ने ही घुमा दिया, इतने सवाल जवाब कौन करता है, वो भी इतने सारे लोगों के बीच में, ये भी नहीं सोचा बेचारे मासूम बच्चे पर क्या बीतेगी, दे देना देन केबीसी की तरह सवालों की बौछार कर दी। शालू नकली अकड़ में आई और बोली, क्या देख लेगी, धमकी दे रही है तू मुझे, मैं अभी कह रही हूँ तुम भी मेरे हाथों से पिटोगी और प्रियल भी, पता नहीं आपस में मिलकर क्या कर रही हो, घर वालों से भी पूरी बात छुपा रखी है, भगवान जाने तुम लोगों के दिमाग में आखिर क्या है, अगर सब सही रहा तो मैं रात को सब बता दूंगी। प्रांजल ने कहा, मैं आपको अभी भी सारी बात बता सकती थी, मगर अभी हमारी प्रॉब्लम काफी ज्यादा है, आप अभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने दो, थोड़ा सब्र करो, फिर मेरा और आपका यही काम है। प्रियल ने सामने से इस बात पर कुछ नहीं कहा। प्रांजल और शालू की बात सुनने के बाद वो इस बारे में सोचने लगी कि शालू को इस बारे में कैसे पता चला होगा। अपने मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसने पूछ ही लिया, मगर प्रांजल मुझे बताओ शालू दी को कैसे पता चला इस बारे में। प्रांजल का दिमाग घूमा हुआ था, तो वो अपना माथा पटकते हुए बोली, क्या बताऊं दी और कहां से बताऊं, कहानी काफी लंबी है, पता नहीं कैसे हमारे दोस्त जैसे रोहन जीजू और तेरी नीली आंखों वाला हीरो बचपन के फ्रेंड निकले। हाँ, बचपन के फ्रेंड हैं या नहीं मैं इसे लेकर भी श्योर नहीं हूँ, मगर इतना जरूर है कि वो दोनों फ्रेंड है। आज सब लंच पर गए थे, वो मुझे आपके नीली आंखों वाले हीरो दिखे, मगर मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया क्योंकि मुझे नहीं पता था बात क्या है, इसलिए मैंने नॉर्मल रहना ही सही समझा। बात आगे बढ़ी तो अलतू फालतू की बात होने लगी, सारी बात आपको लेकर थी,
कहा जा रहा था आप मिस्टर दत्ता की बड़ी बेटी हो, सभी से लेकर गुस्से में थे और फिर मुझे भी नहीं पता चला क्या रायता फैला और कहां से कैसे फैला। सब आपको दत्ता की बेटी बेटी कह रहे थे, वो भी पागलों की तरह। अब इसके पीछे क्या हुआ होगा ये कौन बताएगा, तुम भी आधी अधूरी बात बताती हो। प्रियल ने भी सामने से अपना माथा पटका। मुझे जो पता था मैंने बता दिया, मुझे यही कहानी पता है बस, इसके पीछे की कहानी क्या है ये मुझे भी नहीं पता, मगर शायद मुझे पता है, शालू ने कहा और दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो सब एंगेजमेंट के लिए इन्वाइटेड थे मगर एंगेजमेंट में नहीं आए थे, वो सभी एंगेजमेंट में नहीं आ पाए थे, इसलिए रोहन ने एंगेजमेंट को लाइव कर दिया था। प्रांजल इतना सुनते ही तुरंत प्रियल से बोली, ये जो भी रायता फैला है वो उसी लाइफ की वजह से होगा, उन्होंने आपको प्रभास दत्ता के साथ फैमिली फोटो में देखा होगा और वहीं ये गड़बड़ हो गई होगी, उन्हें लगा होगा आप उनकी फैमिली से हो, उनकी बेटी हो, हमारी फैमिली से हो और मेरी बड़ी बहन हो। ओ गॉड, प्रियल को सुनकर हैरानी हुई। शालू दी, ये बात आप मुझे पहले नहीं बता सकते थे क्या? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उनके सामने ही नहीं आती, उसी दिन उन्हें गलतफहमी हो गई होगी, गलतफहमी हुई होगी और पारा सर पर चढ़ गया होगा, उन्हें लगा होगा मैंने अपने पिता का नाम गलत लिखा है, तभी वो नकली आइडेंटिटी कर रहे थे। प्रांजल परेशान होते हुए बोली, ओ दी अब दुआ करो बाकी घर वालों को ना पता चल जाए, अब रोहन जीजू को भी पटाना पड़ेगा, वो तो हैं भी अभी आपकी नीली आंखों वाली हीरो के साथ, मुझे ये भी नहीं पता वो मानेंगे या नहीं। प्रियल सामने से बोली, क्या फायदा प्रांजल, जो भी हालात बन रहे हैं लगता है मुझे कॉलेज से निकाल कर रहे हैं, मेरे यहाँ रुकने का कोई चांस नहीं। प्रांजल को अब ये नहीं पता था कि प्रियल को नोटिस मिला है। क्या, पर कैसे? हे भगवान, इतनी सारी गुड न्यूज के बाद मैं बस इसी की कमी रह गई थी, एंगेजमेंट तो ठीक से हो गई मगर अब है कि बुरी से बुरी खबर सुनने को मिलती जा रही है, एंगेजमेंट के बाद से पता नहीं कौन कौन से झटके लग रहे हैं एक के बाद एक।
प्रियल बोली, पता नहीं यार, वो नकली आइडेंटिटी के साथ उन प्रभास दत्ता से गुस्सा भी थे, अजीब अजीब बात कर रहे थे। फिर वो कुछ देर के लिए रुकी और बोली, अब पता नहीं निक के तुम्हारे डैड से क्या इशू है, और सच कहूँ जब से उन्हें पता चला है कि मैं मिस्टर दत्ता की रिलेटिव हूँ, ऐसे पीछे पड़े हैं जैसे मैं कोई उनके पिछले जन्म की दुश्मन हूँ, और रिलेटिव छोड़ो, वो तो मुझे उनकी जो बेटी समझ रहे थे वो ऐसी समझ रहे थे जैसे मैं उनकी जान की दुश्मन हूँ, मानो मुझे प्रभास दत्ता ने स्पेशल ट्रेनिंग देकर उसकी जान लेने के लिए भेजा है। शालू ये सुनकर लास्ट टाइम को याद करते हुए बोली, हाँ यार, गुस्सा तो बहुत था वो, लंच में एक बार के लिए मैंने बताने की कोशिश भी की थी कि तुम उनकी बेटी नहीं हो, पर वो तो किसी की सुनने की तैयारी नहीं था, बाद में बात आगे बढ़ी तब ये सामने आया कि तुम उनकी बेटी नहीं हो। प्रांजल मुंह बनाते हुए बोली, हाँ मुझे भी सुना रहा था वो पागल, मेरा तो एक बार के लिए दिमाग खिसक गया था, मैं उसे सुनाने वाली थी, फिर मैंने सोचा क्यों अपने होने वाले जीजू से इतनी बहस करूं, तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला, अगर मुझे उनकी केयर ना होती तो मैं उन्हें बहुत सुनाकर आती जो उसने कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं सुना होगा। प्रियल ने भी सामने से मुंह बनाया और कहा, उसके तेवर देखकर लग तो नहीं रहा वो तेरे होने वाली जीजू कभी होंगे भी, अगर ऐसे ही नखरे रहे तो मैं अपनी ट्रेनिंग छोड़कर वापस इंडिया आ जाऊंगी, नहीं चाहिए ऐसा घर जिसमें इज्जत ना हो। शालू ने प्रांजल की तरफ देखा और टेढ़ी आंखों से पूछा, होने वाले जीजू मतलब? प्रांजल पंजाबी अंदाज में बोली, ओए ठंड रख कुड़िए, सब पता लग जाना है आपको, ये जो भी चीज है इसके पीछे की कहानी तो आपने कभी फिल्मों में भी नहीं सुनी होगी, देखना जब मैं बताऊंगी तो आपको मजा आएगा। फिर प्रांजल ने प्रियल से कहा, और आप भी ठंड रखिएगा दीदी, धैर्य रखिएगा, सब ठीक हो जाएगा। प्रियल बोली, हाँ हो ही जाए तो अच्छा है, वैसे भी मुझे निकाल तो रहे ही हैं, बस तब तक घर वालों को पता ना चले तो अच्छा है, उसके बाद मैं तो वैसे भी नहीं पता चलना, क्योंकि मैं अमृतसर चली जाऊंगी नानी के पास और ये किस्सा यहीं खत्म, ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। इतना कहने के बाद उसने कहा, चल रखती हूँ, तुम शालूदी को सब बता देना। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद प्रियल ने दोबारा अपने हाथ की तरफ देखा, उसके हाथ में बहुत पेन हो रहा था, उसने मारकर उठाया और अपने दुख रहे हाथ पर स्माइली इमोजी बनाया। इमोजी बनाने के बाद वो अपने हाथ को देखकर मायूसी से बोली, तुम मुझे दर्द दे रहे हो मगर मुझे तुम्हारा दर्द अच्छा लगा, कम से कम ये इतनी तकलीफ तो नहीं दे रहा जितनी तकलीफ निक का मुझसे दूर होने का दर्द दे रहा है। फिर वो खुद में ही खोते हुए बोली, कोई करीब आए भी तो ऐसे ना आए, मेरा मन यहाँ से बिल्कुल भी जाने का नहीं कर रहा, मैंने यहाँ जितना भी टाइम बिताया वो मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम था, इसे मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी, मैं सब कुछ मिस करूंगी, और कैप्टन निक भले ही मुझे आपका प्यार ना मिला हो लेकिन दोस्ती तो मिली, थोड़े ही समय के लिए हो लेकिन उसमें भी बहुत खुश थी मैं, बाकी शायद मेरी किस्मत में खुशियाँ लिखी ही नहीं, मैं आपको भी मिस करूंगी। उसने अपने दुखने वाले हाथ को सीने पर रखा और बेड पर लेट गई। बेड पर लेटने के बाद उसने ऊपर छत की तरफ देखते हुए कहा, कैप्टन निक मैं आपको मिस करूंगी।